गीता के चैप्टर 13 के दसवां भाग है, 10th part ऑफ चैप्टर 13 ऑफ गीता। मेरे साथ मिलकर बोलिए, मयि चानन्ययोगेन भक्तिराभ्यभिचारिणी विविप्त देश सेवित्व मरतेर जन संसदे मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व मरतेर जन संसदे। ज्ञानी का क्या लक्षण होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए वाइज मैन, उसमें गीता में कृष्णा 20 डिफरेंट सिम्टम्स बताते हैं कि ये दीज आर द सिम्टम ऑफ वाइज मैन। उसमें से इस श्लोक में 2-3 सिम्टम्स है। द वन ऑफ देम इज अनन्य योगेन भक्ति, डेडिकेटेड कॉन्सेंट्रेशन एंड अनस्वर्विंग डिवोशन टू गॉड। दूसरी की विविक्त देश सेवित्व, रिसोर्टिंग टू सॉलिटरी प्लेसेस। एंड तीसरी चीज है अरतिर जनसंसदी, डिस्कम्फर्ट इन मिड्स ऑफ पीपल। आज के ये 3 विषय हैं जो वाइज मैन के सिम्टम कृष्ण मानते हैं। पहली बात है कि उसकी जो भक्ति होती है, ज्ञानी व्यक्ति की जो डिवोशन है, वो डेडिकेटेड होता है। और नंबर 2, वो व्यभिचारी नहीं होता है। व्यभिचारी व्यक्ति, वैसे ही हिंदी में व्यभिचारी कहते हैं या व्यभिचारिणी, जिस पुरुष के अनेक स्त्रियां हो उसे व्यभिचारी कहते हैं, जिस स्त्री के अनेक पति हो व अनेक पुरुषों से संबंध हो उसको व्यभिचारिणी कहते हैं। मतलब जब आपका मन, आपका प्यार खंडित हो, पाठ पाठ हो, आप उससे व्यभिचारी या व्यभिचारिणी कहते हैं। नॉट डिवोटेड और अटैच्ड टू एनीवन एल्स, दैट इज कॉल्ड अव्यभिचारिणी। जिससे प्रेम करते हो उसी से 100% 100% डेडिकेशन है। ये जो पूर्ण भक्ति, डिवोशन इन टोटलिटी, दैट इज कॉल्ड अव्यभिचारी भक्ति। जो ईश्वर में अव्यभिचारी भक्ति रखते हैं और अनन्य योगेन, और किसी के साथ नहीं भाव रखते हैं, वो ज्ञानी का लक्षण होता है। भक्ति का अर्थ होता है, नारद भक्ति सूत्र में ये उसका डेफिनेशन है, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। द सुप्रीम लव इज कॉल्ड भक्ति। प्यार तो हम करते हैं, प्रेम या लव हम करते हैं, पर जब उस प्यार में एक्सपेक्टेशन छुपा होता है तो वो प्यार कम होता है, वो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होता है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होता है, जिसमें म्यूचुअल बेनिफिट को ध्यान में रखा जाता है। पर उसका जो नाम हम देते हैं, प्यार का नाम देते हैं, पर प्यार का जो डेफिनेशन है, जिसमें कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है, जिसमें कुछ दूसरों, जिससे आप प्यार करते हैं उसके लिए करके आप खुश होते हैं, आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके बदले वो मेरे लिए क्या करेगा। जब मेरा एक्सपेक्टेशन होता है कि मैं किसी से प्यार करता हूं और मैं एक्सपेक्ट करता हूं वो भी मुझसे प्यार करे, फिर वो प्यार नहीं होता है। वो तो जैसे आप बाजार में जाते हैं, पैसा देते हैं, सामान खरीदते हैं, वो एक्सचेंज है, और वो एक्सचेंज उसकी कंडीशन है। मैं प्यार तभी करूंगा जब तुमसे प्यार मिलेगा, मैं तभी खाना तुम्हें दूंगा जब तुम झाड़ू पोछा लगाओगे। तो वो म्यूचुअल है। उसको हम प्यार का नाम देते हैं, पर प्यार एक्चुअली वो है जहां आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। छोटे से बच्चे को जो मां प्यार करती है, उसकी हर चीज को संभालती है, रात रात भर जागती है, वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती है कि ये बच्चा को मैंने आज किया और सुबह उठ के वो मेरा ख्याल रखने वाला, ऐसा कुछ नहीं। ना वो ये सोच के करती है कि बड़ा होकर ये मेरे लिए कुछ करेगा, उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो इसीलिए करती है कि क्योंकि उसका वहां बिल्कुल प्योर निश्चल प्यार होता है उस बच्चे के लिए। और जब वो प्यार परम प्रेम कब बन जाता है, उसके अंदर वो सुप्रीमेसी कब आ जाती है उस प्यार के अंदर, जब उस प्यार के लिए आप अपने आप को पूरा डुबो देते हो, इन्वॉल्व हो जाते हो, जब उसके अलावा और कुछ होता दिखता नहीं है, दैट इज कॉल्ड परम प्रेम रूपा, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होता है, जो उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, जहां आप अपने आप को सरेंडर कर देते हो। अगर आप कहते हो कि मैं किसी से प्यार करता हूं या करती हूं, पर ईगो बीच में आता है कि आपने ऐसा कहा कि मुझे ठेस पहुंचा, आपने ऐसा किया मुझे ठेस पहुंचा, तो आपकी ईगो इतना बड़ा है, आपकी हर प्यार की हर दो मिनट में ठेस पहुंच जाता है, तो वो फिर प्यार नहीं होता है। वो तो म्यूचुअल अट्रैक्शन भी हो सकता है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, म्यूचुअल एक्सचेंज हो सकता है कि भाई मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम मेरे ख्याल रखो, प्यार तो कतई नहीं है। क्योंकि प्यार की जो लव की जो पहली डेफिनेशन है, जिसमें आपका ईगो बीच में ना आए, ये तो हमारे आम जिंदगी की बात है। जहां जितना ईगो कम होता है, वहां प्यार तो हो ना हो, कम से कम रिलेशनशिप में भी मिठास ज्यादा होता है। जहां ईगो आता है, जहां मैं ज्यादा आता है, वहां रिलेशनशिप को बचाना पड़ता है, वहां आपको लड़ाई करनी पड़ती है टू सेव योर रिलेशनशिप, बिकॉज ईगो इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग इन आवर रिलेशनशिप। और प्रेम में तो ईगो टोटली बैंड है, अगर ईगो की कहीं भी थोड़ी सी झलकी है तो वो प्यार हो ही नहीं सकता। और खास करके जब आप ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, भक्ति का मतलब होता है परम प्रेम करना, अपने आप को सरेंडर कर देना विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी रिजर्वेशन, जब आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं ईश्वर के लिए, दैट इज कॉल्ड भक्ति। पर भक्ति की दूसरी परिभाषा बताई, दूसरी जो कंडीशन बताई डेफिनेशन में, अव्यभिचारिणी हो, ऐसा ना हो कि आप 50 चीजों में ईश्वर समझ के भक्ति करते रहते हैं। जब आपकी भक्ति में उतनी स्ट्रेंथ हो, इतनी पावरफुल हो, वो भक्ति आपको अपने आप रिजल्ट देने लगता है। महाभारत में एक रोचक बड़े इंटरेस्टिंग कहानी आप जानते हैं, एकलव्य और द्रोण की कहानी। एकलव्य को द्रोण के प्रति भक्ति होती है, द्रोण उसके लायक ही नहीं है। एकलव्य की जो भक्ति है, जो डिवोशन है गुरु के प्रति, द्रोण उसके काबिल नहीं है, वो एलिजिबल ही नहीं है। और कमाल की बात है, एकलव्य ने कभी द्रोण को देखा भी नहीं, एक बार मिला था, कभी उसे कुछ सीखा भी नहीं है, ना द्रोण उसके गुरु बनने लायक भी था। उसके बावजूद भी एकलव्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बना, बिना गुरु के। वो जो वन पॉइंटेड डिवोशन है, वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन है, वो आपको बहुत ऊपर ले जाता है। सामने कौन है वो मैटर नहीं करता। अगर वो भक्ति आपकी ईश्वर के प्रति हो, व्यक्ति जीवन के ये नॉर्मल लाइफ से बहुत ऊपर उठ जाता है। भक्ति की चर्चा करने से पहले थोड़ी दो तीन चीजें क्लैरिफिकेशन करनी जरूरी है। भक्ति और अंधभक्ति में फर्क होता है। देयर इज ए डिवोशन एंड देयर इज ए ब्लाइंड डिवोशन, देयर इज ए फेथ एंड देयर इज ए ब्लाइंड फेथ। ब्लाइंड फेथ उसको कहते हैं, यू डोंट लव फ्रॉम योर हार्ट बट यू शो दैट यू आर लविंग समवन। आपके अंदर से कोई भक्ति नहीं है, देयर इज नो डिवोशन इनसाइड यू, बट स्टिल यू आर प्रिटेंडिंग, यू आर कीप प्रिटेंडिंग, आप करते जा रहे हो कि मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे भक्ति हूं, और वो अंधी होती है। जब आपके अंदर कोई डिवोशन नहीं है, प्यार नहीं है, तो आप प्रिटेंड क्यों करते हो? देर आर डिफरेंट रीजन्स। पहला है कि आप डर के मारे करते हो, बिकॉज ऑफ फियर, और बिकॉज ऑफ ग्रीड, आपको कुछ चाहिए, या बिकॉज ऑफ फैमिली ट्रेनिंग, आपके परिवार ने आपको ऐसा ट्रेनिंग दिया है, एजुकेशन दिया है कि आपको भगवान को मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये जो संस्कार पैदा हुआ है बिकॉज ऑफ सोशल एटमॉस्फियर, आप अमेरिका में रहते हैं, चारों तरफ आपको एक खास रिलीजन के लोग आपको स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, ऑफिस में चारों तरफ मिलते हैं, आप धीरे धीरे इन्फ्लुएंस्ड होकर के प्यार करने लगते हो एक खास टाइप के गढ़ को। कल आप अरब में रहने लगेंगे तो आप एक दूसरे एटमॉस्फेयर में रहेंगे, आप कहेंगे मुझे ये प्यार आ गया इसमें। आपके अंदर कुछ नहीं है, यू आर ट्रेंड टू लव, यू आर फियर टू लव, यू आर ग्रीडी टू लव। आप इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि आप स्केयर्ड हैं, डरे हुए हैं, या आप इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि आपको कुछ पाना है, लालच है, या आप इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि आप ट्रेंड हैं, आप एजुकेटेड हैं प्यार करने के लिए। अगर ये सब रीजन है प्यार करने में, तो वो प्यार अंधी होती है, वो ब्लाइंड होता है, उसमें कोई रीजनिंग नहीं चलती, उसमें कोई लॉजिक नहीं चलता, उसमें कुछ दिल नहीं चलता। लोग कहते हैं कि अंधी भक्ति में, ब्लाइंड फेथ में दिमाग नहीं चलाते लोग, पर इन रियलिटी दिमाग वाले आदमी ही ब्लाइंड फेथ करते हैं, क्योंकि ब्लाइंड फेथ दिल से होता नहीं है, दिमाग से होता है। जहां फायदा होता है वहीं अंधी भक्ति आती है। क्यों आप जादू टोना में जाते हैं? कुछ फायदा ढूंढने के लिए। क्यों गुरुओं के चक्कर में पड़े रहते हैं? कुछ फायदा पाने के लिए। दिमाग यूज करते हैं, सेल्फिश आदमी दिमाग यूज करता है, उसको रियलिटी से कोई मतलब नहीं, उसको प्योरिटी से कोई मतलब नहीं, उसको काम चलाना है जहां फायदा मिले, उसका डर कम हो जाए, उसकी लालच की भरपाई हो जाए, उसको सोशल रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर मैं किसी से प्यार करता हूं बिकॉज आई एम ट्रेंड टू लव समवन, मान लीजिए कोई आपके पति या पत्नी, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जब आप जवान थे या अभी हैं, आपको आकर प्यार की बातें बोले और आप इंप्रेस्ड हो जाएं, 10 मिनट के बाद पता चला कि वो किताबों से रट के आया था और आपको बोल के चला गया, तो व्हाट विल बी योर रिएक्शन? क्या आप ऐसे व्यक्ति से मानेंगे कि आपसे प्यार करता है? पर हम समझते हैं कि भगवान इतना उल्लू है, हमसे भी ज्यादा उल्लू है, कि हम ट्रेंड होकर के उससे प्यार की बातें करें और वो मान जाता है। दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड डिवोशन। अगर आपके दिल से वो नहीं निकलता है, भक्ति की सिंपल डेफिनेशन है प्यार है, प्रेम। जिस दिन आपके दिल से ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा हो और वो प्रेम अनकंडीशनल हो, जब वो भक्ति, वो प्रेम विदाउट एनी रिजर्वेशन हो, वो अपने आप डिवोशन कहलाता है, भक्ति कहलाती है। और कोई भी रीजनिंग है वो ब्लाइंड है, वो सुपरफिशियल है। लोग बुढ़ापा में ज्यादा भगवान को मानने लगते हैं, मंदिर मस्जिद वगैरह ज्यादा जाने लगते हैं। जवानी में तो इनको सब बकवास लगता है, इसीलिए नहीं जाते कि वो भक्त बन गए हैं, इसीलिए कि अब डर सताने लगा है, समय नजदीक आ गया है, पता नहीं जिंदगी भर तो कुछ किया नहीं और पता नहीं जिंदगी भर तो हम दुनिया मस्ती में रहे और दूसरों को मजाक उड़ाते रहे, ये क्या राम होता है भगवान होता है, ये सब बकवास है। बुढ़ापा आई तो सताने लगता है, पता नहीं कहीं सचमुच भगवान हो जाए और हमारा सारा सत्यानाश कर दे, चलो बुढ़ापा में तो थोड़ा नाम ले लो, थोड़ा रास्ता तो क्लियर रहेगा। ये पाखंड होता है, इसी को कहते हैं ब्लाइंड फेथ। अगर आपको जिंदगी भर भक्ति नहीं है और बुढ़ापा में आई गई, दैट इज ब्लाइंड फेथ। हमारे बच्चों को घरों में सिखाया जाता है भगवान की भक्ति करो, ट्रेंड किया जाता है, और वो ट्रेनिंग की प्रोसेस में क्या सिखाया जाता है, डराया जाता है, नहीं करोगे तो भगवान क्या क्या अनिष्ट करने वाला है, करोगे तो कैसे कैसे फायदा देने वाला है। किसी भी बच्चे को पूछो, मैं स्कूल में जाता हूं, कभी कभी बच्चों को पूछता हूं, बोलो भाई बताओ क्यों भगवान को प्रेयर करना है, क्योंकि भगवान खाना देगा, क्योंकि भगवान पढ़ाई देगा, मतलब कुछ देगा कुछ करेगा। बहुत कम बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि हम इसीलिए भगवान की भक्ति करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें बहुत कुछ दे रखा है ऑलरेडी। ये मां बाप सिखाते रहते हैं, उसके अंदर वो ग्रीड पैदा करते हैं, वो फियर पैदा करते हैं, और आगे जाकर के वो धार्मिक बनता है, वो डिवोटी बनता है, बट उस धार्मिकता में नास्तिकता ज्यादा होती है, आस्तिकता कम होती है, उसमें ईश्वर को नकारने का गुण अंदर ज्यादा होता है, एक्सेप्ट करने का गुण कम होता है, क्योंकि वो मजबूरी में ट्रेंड होकर के मानता है, उसके अंदर कोई प्रेम अपने आप नहीं पैदा हुआ है। दूसरी बात होती है, जब आप भक्ति करते भी हैं वो अव्यभिचारी हो, उसमें सिंगल पॉइंटेड हो। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो ऑलवेज पॉलिटिकली राइट बात करते हैं, जैसे आपके पॉलिटिशियंस हैं, आपके सोशल इंटेलेक्चुअल्स हैं, और कुछ आम आदमी जो अपने आप को बड़े इंटेलेक्चुअल समझते हैं, पॉलिटिकली राइट बात, सब अच्छा है, सब ठीक है, सब ठीक है, वेद भी ठीक है, गीता भी ठीक है, भागवत भी ठीक है, कुरान भी ठीक है, बाइबल भी ठीक है, आलू भी ठीक है, प्याज भी ठीक है, टमाटर भी ठीक है, सब ठीक है। सबको ठीक कहने का अर्थ ये नहीं कि उन्होंने सब पढ़ा है, पूरा वेद पढ़ लिया, बाइबल पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया, गीता पढ़ ली, ब्रह्मसूत्र पढ़ ली, भागवत पढ़ ली, फिर बोला कि भाई सब ठीक है। सबको ठीक का मतलब है कि उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा, एंड ही डजंट केयर अबाउट इट, दैट इज द मीनिंग, अब सब ठीक है। उपेक्षा भाव इसको कहते हैं, इग्नोर। जब उपेक्षा भाव होता है तो आपको सब ठीक लगता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है अफ्रीका में क्या होता है, अफगानिस्तान में क्या होता है, अरब में क्या होता है, फ्रांस में क्या होता है, मुझे क्या फसाव, एक ही है, मुझे अपना ऑफिस जाना है, घर आना है, बीबी बच्चे संभालनी है, दुनिया चलती है, सब बदमाश हैं। बहुत सारे लोग बड़े आराम से एक ही सेंटेंस, सब नेता चोर होते हैं, कितने नेताओं को जानते हो, और जब उसके मंदिर में प्रोग्राम हो, उसके यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन हो, उसके हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हो, सबसे पहले नेता ढूंढेगा कौन से नेता को बुलाऊं, ये देख के नहीं बुलेगा कि कौन ठीक है सही है, उसके लिए तो सब नेता ठीक है, वो बगल का चोर का नेता भी मिल जाए तब भी उसको बुलाएगा, जब चला जाएगा बोलेगा सब नेता चोर हैं। मतलब इसका अर्थ नहीं कि हम बिल्कुल स्टडी करके बोल रहे हैं सब नेता चोर हैं या सब नेता अच्छे हैं, मतलब हमें वी डोंट केयर अबाउट देम, जो जरूरत पड़े तो चले जाएंगे, नहीं तो नहीं, सब चोर बैठे रहेंगे, सब अच्छे हैं। इग्नोरेंस में, इग्नोर करने में भक्ति नहीं होता है, भक्ति प्रेम होता है। प्रेम रस होता है, आनंद होता है, आप मजा लेते हैं। अब ये कैसे कहेंगे रसगुल्ला और पिज्जा एक ही चीज है? वो तभी बोलेंगे ना जब आपने पिज्जा भी नहीं खाया होगा, रसगुल्ला भी नहीं खाया होगा। जो रसगुल्ला खाया होगा, पिज्जा खाया होगा, वो कभी नहीं कहेगा कि दोनों एक ही चीज है। दोनों की अपनी अपनी क्वालिटी है, अपनी अपनी टेस्ट है, अपनी अपनी मजा है, अपना अपना स्वाद है, बट दे आर नेवर सेम। इसीलिए जिसको लगता है, जो व्यक्ति आपको दिखे कि सब ठीक है, वो अंदर से कभी भक्ति किया ही नहीं है, उस भक्ति के आनंद को उसने कभी मजा लिया ही नहीं है। जो रसगुल्ले का आनंद लिया, वो कभी नहीं कह सकता लड्डू और रसगुल्ला एक ही है, लड्डू कितना भी मीठा हो। रिमेंबर इट। कुछ लोग कहीं नहीं झुकते हैं, क्यों? उनको लगता है ईश्वर से बकवास है, नास्तिक होते हैं। कुछ लोग हर जगह झुकते हैं, वो उससे कम नास्तिक नहीं होते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ईश्वर है नहीं है, बस डर है वो पता नहीं होगा तो कोई बिगाड़ ना दे, अगर इधर होगा तो इधर क्यों नहीं होगा, वाला इधर भी मार दो एक। जब डर और लालच या ट्रेनिंग लेकर के हम भक्ति करें तो फिर हमें चोर साधु अच्छा बुरा में कोई फर्क नहीं दिखेगा, रसगुल्ला मिठाई कोई फर्क नहीं दिखेगा। जब आप समझ गए, रियलिटी को समझते हैं और आपकी अपनी जो एटीट्यूड है, टेंडेंसी है, जिस तरह का नेचर है, उसके हिसाब से आप उसको चूज करते हैं, दुनिया में सैकड़ों तरह के मिठाइयां होंगी, हर मिठाई की टेस्ट अलग अलग होगा, वो सारे एक नहीं होते। मिठाई कहने से सब मिठाई एक नहीं होती है, सबकी अलग अलग टेस्ट होता है। ठीक है, आपको ये मिठाई पसंद है, आपकी जिस तरह का एटीट्यूड है, नेचर है, उस हिसाब से आपको मिठाई पसंद है, आप इसको खाओ, एंजॉय करो। पर दूसरे मिठाइयों को खाया भी नहीं और सबको बराबर में डाल दिया। दुनिया में दो व्यक्ति को सब संसार अच्छा दिखता है या बुरा दिखता है, एक जो परम ज्ञानी है, परम ज्ञानी मतलब जो ज्ञान के कल्मिनेशन तक पहुंच चुका है, जो ये रियलाइज कर चुका है कि घट घट में ईश्वर आत्मा है, परमात्मा है, वो फिर कुत्ता हो, बिल्ली हो, इंसान हो, अच्छा हो, बुरा हो, सब में उस ईश्वर को देखता है, रियलाइज करता है। दूसरा बेवकूफ है जो कुछ नहीं जानता, इसीलिए सबको बराबर देखता है, कुत्ता और इंसान को भी बराबर समझ बैठता है, इसीलिए बाकी बीच के लोगों को समझ आता है। पहाड़ के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति को किसी ने पूछा कि पहाड़ जाने के लिए रास्ता कौन सा है, क्योंकि तो बहुत सारे रास्ते, इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी, इधर से भी, बोले सब रास्ते एक ही हैं। जब आप सब रास्ते एक ही बोलते, आप तो सभी रास्तों पर जा नहीं सकते, आपको एक ही रास्ता चुनना पड़ेगा ना, किसी एक रास्ते पर जाना होगा ना ऊपर। ये थोड़ी है कि आप हर रास्ते से जाएंगे तो आपकी तो 100 जिंदगी गुजर जाएगी पहाड़ पर पहुंचते पहुंचते। आप किसी को रास्ता बताएंगे तो एक ही रास्ता बताएंगे ना, भाई यही रास्ता अपना लो, दैट इज दस्ट। अगर आपको पता नहीं है तो आप कह सकते हैं कि मेरे दृष्टि से यही रास्ता शॉर्टकट है, बाकी मुझे पता नहीं है। पर मैं अगर कहूं 5 माइल घूमकर आना भी एक ही बात है, 1 माइल सीधे जाना भी एक ही बात है, 40 माइल घूमकर आना भी एक ही बात है, ना मुझे जाना है ना मुझे किसी को जाने के लिए मोटिवेट भी करना है, तभी व्यक्ति पहाड़ के नीचे बैठा हुआ बोलेगा सब रास्ते ऊपर जाते हैं, जिस रास्ते भी चले जाओ। आप पूछेंगे हमें तो सिखाया गया एक से प्यार मत करो, प्यार जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, अच्छी बात है, बेसिक फर्क समझ लीजिए।
या तो आप एक से प्यार करें या पूरी दुनिया सबसे अनंत से प्यार करे। जब अनेक से प्यार करते हैं तो आप व्यभिचारी होते हैं। या तो आप अपनी बीवी से या पति से प्यार करें या दुनिया के हर स्त्री से प्यार करें, वो किसी भी नारी जाति का कोई भी हो, सबसे प्यार करे। अगर आप अपनी पत्नी के अलावा दो चारों से प्यार करते हैं तो आप अच्छे लक्षण नहीं है आपका, ये आपका सिम्टम अच्छा नहीं है। जब कहा जाता है सबसे प्यार करो तो अनंत से प्यार करो, फिर उस समय ना आप रहेंगे, ना आपकी पड़ोसी रहेगा, ना आपका रिश्तेदार रहेगा, सारी दुनिया एक हो जाएगी। अगर इतने समझ में आप आ चुके हो, अब व्यभिचारी भक्ति से आपके अंदर जो दृढ़ता आएगी, जो मजबूती आएगी, वो आपके जीवन में बदलाव लाएगा। अगली है, विविक्त देश सेवित्व मरतेर जन संसति। जो ज्ञानी व्यक्ति है उसका दूसरा लक्षण कृष्ण कहते हैं विविक्त देश सेवित्व। उसको अकेले में रहना अच्छा लगता है, सोलिटरी प्लेसेस में। संसार में आपके साथ जो कुछ होना है, जो आपको भोगना है, जो कुछ पाना है, वो तो आपको अकेले ही करना है। दूसरों के साथ मिलकर कभी भी आप आनंद पा नहीं सकते हो। खाने का आनंद क्या है वो आप जब खाओगे तभी पता चलेगा। मैं क्या हूं जानने के लिए आपको अकेला होना जरूरी है। खुद को समझने के लिए, खुद को जानने के लिए अकेला होना जरूरी है। प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि लोग होते थे, जीवन का ज्यादातर समय वो अकेले गुजारने की कोशिश करते थे। आज भी जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पर जाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा समय अकेले गुजारते हैं। और आपके लिए सलाह भी है, लाइफ में कभी भी आपको लगे कोई प्रॉब्लम है जिसका सलूशन नहीं मिल रहा है, वो प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, आपके पर्सनल प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, जहां आपको लगता है कि आप फंस चुके हैं, आप ट्रैप्ड हो चुके हैं, आप परेशान हो, आपको कुछ नहीं सूझ रहा है, कुछ दिन के लिए या कभी कभी दिन में एक दो घंटे अकेले बैठिए, जहां कोई ना हो, दरवाजा बंद करके बैठिए, बस बैठिए। कोई ना हो मतलब नहीं कि टीवी और रेडियो या सेलफोन हो, नहीं, ये तो सबसे बड़े बीमारी है। सिर्फ आपके अलावा कुछ भी ना हो, सिर्फ आप हो। समस्या है कि आज की तारीख में लोग इतने ज्यादा खुद से डरते हैं, ये बड़ी कमाल की बात है। ये मॉडर्न जनरेशन के लोग सबसे ज्यादा अगर किसी से डरते हैं वो खुद से डरते हैं। कैसे? अकेले दो मिनट रह गए बिना किसी के सहारे, मतलब टीवी ना हो, रेडियो ना हो, घड़ी ना हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजें ना हो, कोई मीडिया ना हो, आदमी ना हो, उनको लगता है तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लगता है जैसे किसी नरक में फंस गए। जो आदमी अपने से इतना नफरत करता हो वो क्या प्यार बांटेगा। जो आदमी अपने से इतना बोर होता हो कि दो मिनट अपने आप को झेल नहीं सकता, वो दूसरों को क्या, दूसरों के लिए क्या बोरिंग दूर करेगा। फिर हम भागते हैं, कहां भागते हैं भाई, हमें क्लब चाहिए, हमें एक सोशलाइजेशन चाहिए, हमें लोग चाहिए जिसके साथ बैठूं। लोग तो मंदिर भी जाते हैं सोशलाइजेशन करने के लिए भी आते हैं, लोग तो मंदिरों में भी जाते हैं सोशलाइज, उनको धर्म कर्म से बहुत लोगों को कम मतलब है, चलो किसी से बातचीत गॉसिप करने के लिए मौका तो मिल जाएगा, अकेला होने का डर तो निकल जाएगा। और समस्या क्या है, ऐसे लोग जब ग्रुप में बैठते हैं वो अगर आपकी बात सुनते हैं इसलिए नहीं सुनते हैं कि आपकी बात उनको अच्छी लग रही है, इसलिए सुनते हैं कि आप बोल लो फिर उसके बाद फिर मैं बोलूंगा, फिर कहोगे ना बोलने का मौका नहीं दिया, और जब मैं बोलूंगा तो फिर बोलता जाऊंगा। वो आपकी बात क्यों नहीं सुनता, उसको बोर लगता है, पर ये भूल जाता है कि तुम जब बोलते जाते हो दूसरे कितने बोर होते हैं। बहुत बोलने वाला आदमी पीछे से लोग बोलते हैं बड़ा बोर आदमी है, दूर रहना उससे, सर पकाएगा। ये सर कौन पकाता है, जो खुद अपने आप को बोर सहज सह नहीं पाता है। ऐसे आदमी को आप अकेले छोड़ दिए कहीं दो मिनट के लिए, जहां कुछ भी ना हो, वो तड़प जाएगा, परेशान हो जाएगा। जो आदमी खुद से बोर हो, वो दूसरों को एंटरटेन नहीं कर पाएगा, वो दूसरों को आनंद नहीं दे पाएगा। आपको अपने से आनंद ढूंढना पड़ेगा, तभी लोगों में डिप्रेशन बढ़ता है, तभी लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है कि अब मुझे लोग पूछते नहीं है, लोग अब मेरे पास आते नहीं है, लोग बात नहीं करते। संसार में आदमी अकेला आया, अकेला जाएगा। बीमारी आती है तो खुद को झेलनी पड़ती है, दर्द आता है तो खुद को ही सहना पड़ता है, मरते हैं तो खुद ही मरते हैं, बुराई सहनी पड़ती है तो खुद को ही करनी पड़ती है, आनंद होना तो खुद को लेनी पड़ती है। बाकी लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, बाकी लोग आपको कंसोल कर सकते हैं, पर जो भोग है, जो एक्सपीरियंस है, वो तो खुद को ही करना पड़ता है। पर जो ज्ञानी आदमी, जो समझदार आदमी, वो समझता है लाइफ में सब चीजें इकट्ठा नहीं होता है, बहुत सारी चीजें खुद को ही भोगना पड़ता है। क्यों नहीं मैं अपने आप को तैयार करूं कि मैं अपने में ही आनंद ले सकूं, इसीलिए वो अकेले रहता है। आफ्टर ऑल जिस दिन आप उसको समझोगे, अपने आप को समझोगे, तो आपको अकेले रहकर ही खुद को समझना पड़ेगा। आप ग्रुप में बैठ के, टीवी के सामने बैठ के, मीडिया के सामने बैठ के, पब्लिक में बैठ के खुद को नहीं समझ सकते हो। ऐसे व्यक्ति को लोगों में अरति होती है, इंटरेस्ट नहीं होता है पब्लिक में बैठने की, जो ज्ञानी समझदार व्यक्ति है। भीड़ में क्लब का रस, भीड़ का रस, दोस्तों की तलाश, ये खतरनाक सिम्टम है व्यक्ति के लाइफ में। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल डिजीज है कि मुझे बिना दोस्तों के जी नहीं सकता, बिना ग्रुप में जी नहीं सकता, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होगा। वो वही व्यक्ति होते हैं जो खुद से थक चुके हैं, खुद को सह नहीं पाते हैं। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, तुम अपने शरीर को सुंदर नहीं मानने को तैयार हो तो दूसरों की क्या मानोगे? अपनी बुद्धि को ठीक नहीं मान सकते हो तो दूसरों की बुद्धि को क्या मानोगे? इसीलिए खुद पर भरोसा रखने की जरूरत है। जब हम खुद पर भरोसा रखेंगे, हम खुद में खुद को एंजॉय करना सीख पाएंगे, हम दूसरों को भी एंजॉय दे सकते हैं, दूसरों के द्वारा भी एंजॉयड हो सकते हैं। और ये जरूरी है, जिसने अपने अंदर नहीं देखा वो बाहर कुछ नहीं देख सकता। एक छोटी सी कहानी कह करके समाप्त करता हूं। गांव में एक कंजूस आदमी था, जो जमींदार था, बहुत पैसा वाला आदमी था, उसके पास बहुत पैसा था, पर कभी भी किसी भी हालत में कोई उसके पास दान मांगने जाए, कुछ करने जाए, वो कभी भी एक चवन्नी एक सिंगली नहीं देता था। तो राज्य में प्लेग, भयंकर बीमारी पड़ी, जैसे आजकल बाढ़ आता है, सुनामी आती है, बहुत लोग बर्बाद हो जाते हैं। कुछ एनजीओ वाले लोगों ने घर घर घूम करके चंदा करना शुरू किया, तो सोचे एक बार इसको मांग लेते हैं, पता नहीं देगा नहीं देगा। दो चार लोग मिलकर गए उसे चंदा मांगने के लिए, और उसको चंदा मांगा, उसने कुछ बोला नहीं। कुछ उसमें पढ़े लिखे समझदार लोग थे, उन्होंने उसको समझाया दान की क्या महिमा है, दान देने से क्या फायदा होता है, दान देने से कैसे मन पवित्र होता है, दान देने से कैसे आपके धन बढ़ता है, दान देने से मन कितना अच्छा होता है। खूब दान की महिमा समझाया। समझाने के बाद धनी व्यक्ति ने कहा, मुझे मजा आ रहा है, मुझे थोड़ा और दान की महिमा के बारे में समझाओ, ये बड़ी अच्छी बात है, मैंने कभी सुनी नहीं थी। मांगने वाले जो दान मांगने गए थे, उनको लगा शायद इसका दिल पिघल गया है, शायद मोटिवेटेड होने लगा है, तो उन्होंने खूब दान के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो उन्होंने कहा कि अब तो आप दोगे? बोले नहीं, अब मैं आपके साथ मिलकर दान मांगने जाऊंगा लोगों को। सज्जनों देवियों, जब आपके अंदर कुछ बदलाव ना हो तो कितनी भी अच्छी बातें बाहर से आए, वो दूसरों के लिए चला जाएगा, खुद के लिए नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।